तो भाव सुधारने के विषय में कुछ कहा जाता है। गीता को देख रहे थे, मालूम दिए कि भगवान जो है कर्म के सुधार के ऊपर इतना जोर नहीं देते हैं जितना स्वभाव के सुधारने पर जोर दे रहे हैं। जैसे भगवान ने कहा कि सदृशं चेष्टे स्वस्या प्रकृति ज्ञानवान भी प्रकृति ज्ञानति भूतानि निग्रह किं कृष्ट सदृशं चेष्टे स्वस्या प्रकृति ज्ञानवान भी प्रकृति ज्ञानति भूतानि निग्रह किं कृष्ट। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा ऐसा करते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार जो ज्ञानी जो महात्मा पुरुष है उनको भी अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करनी पड़ती है या कहते कि करते हैं। और सारे भूत प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं ना अपने स्वभाव को ही प्राप्त होते हैं। तो मैं ये कर्म करूंगा ये नहीं करूंगा इसमें किसी का हट क्या काम देगा, तो फिर क्या करना चाहिए। इंद्रिय से इंद्रिय चार से राग द्वेषो व्यवस्थित तयोर न भ्रषमा गच्छेत यश परिपंथी नव इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में यन प्रत्येक इंद्रिय के अर्थ में राग और द्वेष स्थित हो रहे हैं उनके बस में नहीं होना चाहिए। हमारे शत्रु है राग द्वेष का त्याग करना चाहिए, काम क्रोध का त्याग करना चाहिए, राग द्वेष से रहित होना चाहिए, इच्छा जी काम क्रोध से रहित होना चाहिए। राग द्वेष विकते सु विषय इंद्रिय शरण आत्म वसीर विधेय आत्मा प्रसाद वधि गच्छति। राग द्वेष रहित इंद्रियों के द्वारा जो विषयों के वहां विचरण करता है कैसी वह इंद्रिया है कि आत्म बसी इंद्री माने अपने बस में है, अपने कंट्रोल में है, साधक के कंट्रोल में है। और मन भी जिसका अपने बस में है ऐसा जो पुरुष है वो प्रसाद को प्राप्त होता है यानी उसका अंतकरण शुद्ध होकर के प्रसन्नता को प्राप्त हुआ है। और वो जो सात्विक प्रसन्नता है उसे सारे दुखों का नाश होकर के और बुद्धि जो है सो परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाती है। तो स्थित प्रज्ञ का उपाय भी यही बताया। ज्ञान होने के उत्तर काल के श्लोक को देखने से भी यही बात सिद्ध होती है कि उसके वहां राग द्वेष काम क्रोध आदि नहीं रहते। काम क्रोध के विषय में भगवान कहते हैं कि काम क्रोध युक्ता नांग यति नांग यत यत साम अभी तो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मना। पांचवी अध्याय के 26वें श्लोक में जो काम और क्रोध से रहित है जिन्होंने अपने चित्त को जीत लिया है ऐसे यत्नशील या सन्यासी निर्वाण ब्रह्म ही उनके लिए सब ओर से बढ़ता है माने निर्वाण ब्रह्म को भी प्राप्त है। ज्ञानार्घन ब्रह्म की प्राप्ति जिसको हो जाती है उसी को कहते हैं निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति। और बार बार भगवान कहते हैं कि त्रिविदंग नरक सेदंग द्वारंग नाशन महात्मा ने कामक क्रोधस तथा लोभस तस्मा चित्रिंग तजे काम क्रोध और लोभ ये तीन साक्षात नरक के द्वार हैं इसलिए इनके बस में नहीं होना चाहिए, ये आत्मा का पतन करने वाले हैं। इन सब बातों से यही बात मालूम हुआ है कि इनके त्याग के बीच के वहां अपनी स्वतंत्रता है। यदि प्रतंत्रता होती तो भगवान क्यों कहते कि इनका त्याग करना चाहिए। तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् कह रहे कि इस वास्ते इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। यदि ऐसी बात होती कि ये त्याग करने की हमारी सामर्थ्य नहीं है तो ऐसी बात नहीं है, त्यागने की सामर्थ्य है तभी भगवान जोर देते हैं। और ये काम क्रोध और लोभ ये नाना प्रकार का पाप करा करके इसको घोर नरक में ले जाते हैं। अनुकूलता के बीच के मौसम जो कि राग और प्रतिकूलता के वहां द्वेष उत्पन्न होता है। यह जो संसार है एक प्रकार से इसमें तीन प्रकार की वृत्ति होती है, एक अनुकूल, एक प्रतिकूल और एक सम। सम जो भाव है वो तो मुक्ति के देने वाला है, निरपेक्ष जो भाव है उसमें भी समता है, और राग द्वेष जो है वो दोनों ही समझो घोर नरक में ले जाने वाले हैं। यदि मनुष्य तेजी के साथ में अपने आप पर कंट्रोल करे और स्वभाव का सुधार करे तो यह बात असंभव नहीं मालूम देती। कल सायंकाल के वहां बात हुई थी भाई अपना सुधार कोई आदमी चालक कर सके, आप यो विचार कर ले कि भाई अपना यो विचार है तो वह विचार ने महत्व देना चाहिए। जैसे पहला अपना लोग दिया करता था तो यह बात आई मन में कि ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, अब मैं चाहू तो ये सुधार हो सके, अब कोशिश करना तो कोई कठिन बात नहीं। इससे भी उत्तम बात यह है कि जो बात होती रहे वो देख तो रहे, कोई भी प्रकार को भविष्य को विचार भी नहीं करे, संकल्प नहीं तो करना ही चाहिए, माने संकल्प तो करना बहुत ही खतरे की चीज है। विचार कोई वक्त में इसलिए आदमी ने थोड़ा करना पड़े कि जैसे आप कुछ भी नहीं कहा और कल आप हाजिर प्रातः काल अठे नहीं और 4:30 बजे तो दूसरा आदमी ने मालूम नहीं पड़े और वे लोग एक प्रकार से आकर इकट्ठा हो जावे, सबके मन में ये थोड़ा धक्को लगे कि रोज टेम तो है ही करे, आज कोई घोषणा भी नहीं हुई, कोई बात जनाई भी नहीं गई, तो एक प्रकार से या उल्टी भी धारणा हो जावे कि क्यों नहीं टेम हुई, तो थोड़ा संकेत होने में तो इसी खराब बात नहीं है। बहुत आदमी ऐसा संबंध हुआ तो थोड़ा संकेत है तो एक उसे करना उचित मालूम देवे कि सत्य की प्रतिष्ठा होने पर उसके वाणी जो है सो फलवारी होती है। वो चाहे ज्ञानी मत हो महात्मा मत हो, ये सत्य को ही माने प्रभाव है, सत्य पालन को सत्य वचन के पालन को यह प्रभाव है। इसी प्रकार से चाहे ज्ञानी मत हो सत्य संकल्प माने संकल्प जो है मैं को यह प्रभाव है कि मैं संकल्प वस्तु सत्य हुए। ज्ञान के सिद्धांत के बीच के बात समझो, जो परमात्मा को जो प्राप्त हो जावे उसके बाद तो एक प्रकार से भावी का कोई संकल्प तो उसको हुआ है को नहीं, और फिर कोई संकल्प सत्य है या वाणी की वास्तव में सत्य है या उसको जब काम है मैंने कोई भी प्रयोजन नहीं रह रही कि जो कुछ हो चाहे मत हो चाहे जैसे ही हो, पर फिर भी एक प्रकार से थी साधक आदमी के लिए तो फायदे की चीज है कि सत्य की जो प्रतिष्ठा है संकल्प की जो प्रतिष्ठा है, और साधक के लिए एक प्रकार से थी मिथ्या जो वचन है वो मुक्ति में बाधक है, मिथ्या जो संकल्प है मुक्ति में बाधक है। तो एक घड़ी के बाद यो काम करना है इस प्रकार को संकल्प नहीं रख करके संकेत मात्र रख जावे तो वो अच्छा है, और उसकी तो बात ही क्या है कि न कोई संकेत करे न कोई संकल्प करे, और जो बात बीच जावे जिसकी सो भगवान की मर्जी मान लेवे तो वह तो और भी उत्तम, किसी भी प्रकार उनको संकेत भी नहीं करे कि 5 मिनट के बाद क्या करना है 1 मिनट के बाद क्या करना है, न संकेत करे और न कोई मन के भीतर के मां कल्पना ही करे, जो बात हो रही है उसने देख तो रहे, तो यह बात बहुत ही ऊंचे दर्जे की है। साधक के लिए तो बात ही क्या है, ये तो सबके लिए गौरव की बात है, साधक के लिए तो परमात्मा की प्राप्ति के मां सहायक है। हर एक माता बहनों को और भाइयों को ख्याल रखने की बात है कि आप लोग एक प्रकार से मन ही मन के बाद नाना प्रकार का संकल्प विकल्प करवो करा कि यो काम यूं करना है यूं करना है और मिनटा में मैंने बदलता रहा कि अच्छा यूं नहीं तो यूं ठीक है। थोड़ी बार के बाद में विचार आप बदलता रहा। इसी प्रकार से आप कठी बार के माँ जाने के विषय के बीच के माँ घड़ी में तो यो विचार कर लियो कि भाई आपने कल चल लो घड़ी में यो कर लियो नहीं कल नहीं परसों और कभी यो कर लियो कि नहीं पांच दिन के बाद कभी दस दिन के बाद विचार करो तो बोलो अच्छा कल ही आपने चला चालो। तो इस प्रकार का जो ये विचार है जिसका कोई दामी चीज नहीं बल्कि एक समझो कि हानिकर है उसकी कोई कदर नहीं होती न इस लोक में न परलोक में। उत्तम बात यह है कि भावी के लिए माने भविष्य के लिए वचन भी कोई नहीं करना चाहिए कि भाई यो काम मैं यू करूंगा। वचन कहने से वह वचन मिथ्या होने की संभावना है। निश्चित वचन आप कह जाए कि यो काम मैं निश्चय करूंगा तो प्रथम तो अपने अधिकार की बात नहीं करनो अपने बस की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक प्रकार से थी अपनो विचार बदल जाए तो वो काम नहीं हो सके तो वचन मिथ्या हुए और आप पहला मर जावा तो भी वो बात मिथ्या हुए मरना कोई बस की बात नहीं है। तो हर एक प्रकार से विचार करके देखे जावे तो एकदम भविष्य के वास्ते निश्चित बात नहीं करनी चाहिए। एक लौकिक कथा इस विषय के बीच के में है मैंने शास्त्रों में तो नहीं देखी। लौकिक कथा यह है कोई ब्राह्मण जो है दान लेने के वास्ते आया था। उस समय के महाराजा युधिष्ठिर ब्राह्मण ने यह बात कही कि महाराज कल आपको देंगे आप कल अमुक समय में आना कल आपको ये चीज दी जाएगी। उसके जाने के बाद में अर्जुन और भीमसेन आदि ने बहुत हर्ष मनाया और उत्सव मनाया। ये देखकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि आज कोई पर्वकाल तो नहीं है ये उत्सव एक प्रकार से मनाया जा रहा है ये किस उद्देश्य से मनाया जा रहा है। तो उसके उत्तर के वहां अर्जुन ने ये बात कही कि आप सत्यवादी है और आपका जो वचन है सो कभी मिथ्या हो नहीं सकता और आपने उस ब्राह्मण को यह बात कही कि हम कल आपको दान देंगे तो ये एक हमारे लोगों के सौभाग्य की बात है कि कल तक तो आपके दर्शन होते ही नहीं क्योंकि उस ब्राह्मण को जब तक दान नहीं देंगे तब तक तो आपका शरीर कायम ही रहेगा। ये सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि आप लोगों ने जो मेरे को चेतावनी दी बड़ी उत्तम चेतावनी दी और ऐसी चेतावनी देनी चाहिए। मैं गलती से यह बात कहती थी कि मैं तुम्हारे को कल ही रखो यानी आपको कल है समय दान दूंगा तो नहीं तो मनुष्य के बस की बात है कोई काम करना और न शरीर का ही भरोसा है तो ऐसी परिस्थिति के बीच के वहां भविष्य का वचन नहीं करना सही। तो वो दान तो फिर दूसरे दिन देना ही था किंतु बात यह है कि इस प्रकार से हम पांच दफे करेंगे तो उसमें एक दफे दो दफे वो बात मिथ्या होने की संभावना है। विचारवान मनुष्यों को इस विषय के मां खूब सावधान होना चाहिए और भविष्य के लिए प्रतिज्ञा नहीं करने की तो ये काम मैं इस प्रकार से करूंगा। नेम तो ले सकता है प्रातः काल के संध्या सूर्य उदय के पूर्व में करनी सायंकाल के संध्या सूर्यास्त के पूर्व में करनी इस प्रकार से अपने मन के बीच के मां एक नेम लिया तो उसके अनुसार वो काम चलता ही है। समझो कि वो यदि जब कभी मर जावे तो वो लागू नहीं पड़े प्रातः काल के पहले ही मर जावे तो लागू नहीं पड़े सायंकाल के पहले ही मर जावे तो लागू नहीं पड़े वो तो एक प्रकार का समझो कि नेम का पालन है। इसी प्रकार से थी नेम के रूप में तो वो चीज तो वर्तमान है इस बात से कोई उसमें आपत्ति नहीं आती। कि बस मनुष्य को सदा ही ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, और वो नियम एक प्रकार से उसका पालन करना चाहिए, जो अपने मन के वहां निश्चय कर लिया जावे वे को पालन करना चाहिए। इस प्रकार से ती नियम के रूप में आप अच्छी अच्छी बातों को पालन करा तो आप बहुत जल्दी अपने स्वभाव को सुधार हो सके, और स्वभाव को सुधार होने से क्रिया को सुधार हो सके। तो मूल ऐसा स्वभाव है, हृदय के बीच के वहां ये निश्चय कर ले हुए, मन के संकल्प के विषय में निश्चय कर ले हुए कि भावी को संकल्प कोई करनो ही नहीं, और भविष्य के वास्ते कोई निश्चित बात एक प्रकार से मन में तय करनी ही नहीं। जब मन में तय नहीं की जाएगी तो फिर वाणी के द्वारा उसको प्रयोग क्यों हो। तो यह बात जो है सो बहुत ही उत्तम बात है। तो अपना जो स्वभाव है देखो आदमी चाहे तो सुधार कर सके है कि अपने मन के भीतर के मां अनेक प्रकार के जो संकल्प विकल्प उठते रहते हैं वे भी कम हो जावे। ये एक निश्चय करे कि अपने भावी के मां क्या करना है, दो मिनट के बाद, पांच मिनट के बाद क्या करना है, तो इस प्रकार का जो संकल्प है उन्होंने बिल्कुल ही ऐसे उठा दे रहे। कोई भी मन के मां बात आवे अपने यो काम करना यो काम करना, तो उसी वक्त में कह दे कि अपने कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, तो जो कुछ हो जाओगे जी कोई ठीक है। तो इस प्रकार से धारणा करने से कई काम ऐसा है कि जिसके वहां एक वक्त पर तो याद नहीं आवे, याद आने के वक्त में ये कहे कि भी ठीक है समय पर जो हो जाए सो ठीक है। तो इसमें कई संसारिक काम के बीच के मां समझो कि नुकसान हो सके। बोले नुकसान हो तो क्या बात है, यो कितना बड़ा नुकसान है, जो आत्मा के कल्याण के विषय में जो एक बड़ी भारी बाधा है, बड़ो एक समझो कि पतन की संभावना है, वो चीज बड़ी क्या संसार को काम बढ़ो। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं, जो वास्तव के मां होने वाली चीज है वो तो हो ही जाएगी, वो तो अपने आप ही हो जाएगी। अरे जो एक प्रकार से अपने अपने भीतर में जो संकल्प करना है जिकर व्यर्थ का है, इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य ने कभी भी न तो मरने की इच्छा ही करनी चाहिए और न जीने की इच्छा ही करनी चाहिए। यदि मनुष्य मरने की इच्छा करे तो एक तो ये पाप है, एक प्रकार की हिंसा है, और दूसरी बात यह है कि उसकी इच्छा करने से किसी मृत्यु प्राप्त नहीं हुए, इच्छा की पूर्ति भी नहीं हुए। ऐसे कोई आदमी जीने की इच्छा करे तो इच्छा करने से कोई जीणो बढ़ जाए वो बात भी नहीं है, और जीने की इच्छा तो प्राय सभी करते हैं और सभी मरते हैं। कोई भी अब आप नहीं चाह रहे कि मैं जल्दी मर जाऊं, चाहे शब्दों से कह दे रहे किंतु विचार से अब आप सिद्ध हो गए कि कोई भी जल्दी मरनो नहीं चाह रहे, अरे मरनो सबको वही है। तो इस वास्ते न कभी मरने की इच्छा करे और न कभी जीने की इच्छा करे। और जितना जो पापमय कर्म है उनकी तो कभी इच्छा करनी नहीं चाहिए, जिसको हम लोग पाप समझते हैं उसकी तो कभी इच्छा करनी नहीं चाहिए, किंतु जिसको हम फालतू काम समझते हैं उसकी भी कभी इच्छा नहीं करनी चाहिए। और मन के जो अधिकांश में फालतू संकल्प होते रहते हैं उनको भी सुधार हो सके इस प्रकार के विचार से, और वो असली सुधार है। शरीर के द्वारा होने वाली जो क्रिया है उनको इतना मूल्य नहीं है जितना मूल्य मन के द्वारा होने वाली क्रिया को है। कहीं कहीं शरीर के द्वारा होने वाली क्रिया को भी महत्व है, और अधिकांश के बीच के महत्व यह बात है कि हमारे शरीर से कोई भी कर्म होता है बुरा या भला, मन और बुद्धि उसके शामिल नहीं है उस समय के बीच के मां, तो मेरे को कोई मूल्य सो नहीं है। और मन और बुद्धि के अंदर समझो कि विचार होता रहे और इंद्रियां उसके शामिल नहीं है, शरीर शामिल नहीं है, तो भी मैं को भी महत्व है। इस बातों को ख्याल में उत्तम से उत्तम होनी चाहिए अपनी बुद्धि, और सोने के समय में तो अवश्य एक प्रकार से संकल्प शुद्ध होना चाहिए। सोने के समय के मां संसार के जो व्यस्त संकल्प होते रहते हैं इनका प्रवाह चलता रहता है, उस प्रवाह में हम सो जाते हैं, तो रात्रि के मां वैसे ही स्वप्न आते हैं, संकल्प के अनुसार ही स्वप्न आते हैं और वो हमारे लिए हानिकारी होते हैं। तो इसलिए शयन के समय में जब तक निद्रा नहीं आवे उस समय के बीच के मां अध्यात्म विषय के संकल्प होने चाहिए। भक्ति ज्ञान वैराग विषय के संकल्प होते होते यदि हमारे को निद्रा आवे तो हमारे लिए बहुत ही फायदे की चीज है, बहुत ही लाभ की चीज है। इसका सुधार तो हम लोगों को जहां तक हो सके कोशिश करनी चाहिए। यह हमारे लिए बहुत फायदे की चीज है। इसी प्रकार से दिन के बीच के मन में संकल्प होते ही रहते हैं, उसका भी सुधार हो जावे तो हमारी आत्मा का कल्याण बहुत शीघ्र हो सके। मन में विचार धारा तो चलती ही रहती है, कभी कछु कभी कछु, और ये विचार हो जावे कि जो खराब जो विचार धारा है उससे हमारा इस लोक में भी पतन है और परलोक में भी पतन है, तो इसका सुधार अवश्य होना चाहिए। ये हमारा भाव हो तो जरूर सुधार हो। अपना सुधार यदि अपने अधिकार के मां नहीं है तो फिर किसके अधिकार के मां है? किसी के स्वभाव को कोई दूसरा थोड़ा बदल सकता है, वो खुद ही बदल सकता है। हाँ, परमात्मा से प्रार्थना करे अपने स्वभाव के बदलने के लिए हृदय से, और उस विषय में परमात्मा से मदद चाहे। मैं मेरे स्वभाव को सुधार करना चाहूँ और आपसे मैं मदद चाहूँ तो मेरी समझ के बीच के मैं उसको मदद मिले। बहुत से भाई लोग कहते हैं कि हम भगवान से बहुत दिन प्रार्थना करते रहते हैं दर्शन देने के विषय के मां, और श्रद्धा और प्रेम बढ़ाने के विषय में, किंतु हम सफल नहीं होते। तो मेरा कहना यह है कि वो प्रार्थना एक प्रकार से आपकी हृदय से नहीं है, वो प्रार्थना आपकी ऊपरी है, इसलिए उसकी तरफ भगवान ध्यान नहीं देते हैं। यदि एक विकस की आपने वाज हुए हृदय से थी, आप यदि उसको चाहें तो जरूर एक प्रकार से आप कामयाब हुए, यानी आप का विचार इसको सिद्ध हुए। यदि कहो आपको क्या पता है, पता तो यह है प्रार्थना करने के ऊपर यदि सुनाई नहीं हुए तो आपको दुख होना चाहिए ना, या तो वो आप प्रार्थना बनावटी है, यदि वास्तव में हृदय से है तो एक प्रकार से भगवान उसको नहीं सुनते हैं तो उसका दुख होना चाहिए, भगवान का आगे रोना चाहिए। जब आपको रुलाई नहीं आती है तो यह समझना चाहिए कि जो आप ऊपर से सीखी हुई बात के अनुसार एक प्रकार से प्रार्थना कर देते हैं तो इससे विशेष कम नहीं होता। जैसे हम लोग गीता का पाठ करते हैं और उसको समझते नहीं है, मन लगा कि आपने हमने क्या पाठ किया, और कहीं अर्थ समझ करके भी पाठ किया तो फिर उसको महत्व नहीं देते कि भाई ये बहुत दामी चीज है, इसने आज से अपने काम में लेने के लिए, न तो उसको धारण ही करते हैं और न उसको काम में ही लाते हैं, तो फिर उसका हमको लाभ क्या मिलेगा। तो इन सब बातों को समझ करके अपने भाव का भी सुधार करना चाहिए, और भाव के साथ साथ अपने क्रियाओं का सुधार तो अपने आप ही हो जाएगा, और अपने ध्यान में आ जावे तो क्रियाओं का भी सुधार अपने को करना ही है। कोई इससे अपने कोई ये तो है ही नहीं कि भी अपने स्वभाव का ही सुधार करना है, क्रिया का नहीं। क्रिया का तो सुधार स्वभाव के साथ अपने आप ही हो जाता है, और साथ साथ की हम ख्याल रखें तो और भी हमारे को मदद मिल सकती है। और स्वभाव का सुधार तो अवश्य करना चाहिए। हमारे स्वभाव के भीतर के मां जितने जो दोष भरे हुए हैं, जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष आदि, इन ऐसे स्वभाव को शुद्ध करना चाहिए कि जो हमारे हृदय में ये दोष न रहे। ये एक मल दोष है, मैलापना है, तो ये इन मैलापने के कारण से हमारी क्रिया भी ऐसो अपने दोष क्रिया करती है। भीतर के मां जो गड़बड़ी है वो तो बाहर के मां आएगी, तो भीतर का सुधार करना चाहिए। और ये सुधार कठिन नहीं है, हम ये समझ लेंगे कि आज के बाद हमारे भीतर में काम करो लोग वो क्यों आवेंगे जो हमारे लिए खतरे की चीज है, हानि कर हमारे पतन में हेतु है, पतन की कोई सीमा नहीं है, ऐसी बुरी बात है, इस प्रकार के ये बुरे भाव हैं, तो ऐसा हम जोर लगावे तो एक प्रकार से थी इसका सुधार जरूर हुए। आज अपना समझो ये जोर लगाने से आठ आना हो गए, फिर बारह न हो गए, चौदह न हो गए, पंद्रह न हो गए, सोलह न हो जाए, इन दोषों का जब हमारे देखते देखते सुधार होता है और दोषों का नाश होता है तो फिर बिल्कुल नाश होना संभव है। इसी प्रकार से थी जो हमारे में गुणों की कमी है, जैसे क्षमा है, दया है, शांति है, समता है, संतोष है, सरलता है, ज्ञान है, वैराग है, भक्ति है, आदि अनेक जो हृदय के जो उच्च कोटि के भाव हैं, उनकी हमारे में कमी है, तो हम कोशिश करें उनके लिए तो उनकी वृद्धि सहज में हो सके। और जब चेष्टा की जाती है तो ये असर भी होता है, तो विशेष चेष्टा की जावे तो विशेष इसका सुधार हो सकता है। तो अपने भीतर के बीच के जो आसुरी भावों की जो बाहुलता है उनको तो एकदम तेजी के साथ में हटाना चाहिए और ऐसा कंट्रोल करना चाहिए कि वे हमारे में प्रवेश ही नहीं होने पावे, और भीतर में जो हमारे कब्जे में आ गए हैं उनको अपने साधन के द्वारा नष्ट कर देना चाहिए और बाहर से और आन नहीं देना चाहिए। ये बाहर की जो हमारी खराब जो क्रिया होती